एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई के मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते।
ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमें रोजमर्रा की चीजों पर, मतलब जिन्हें हम बिल्कुल स्वाभाविक मान लेते हैं ना, उन पर सवाल उठाना सिखाती है।
नमस्ते। और ये किताब है जोनाथन कलर की लिटरेरी थ्योरी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब लिटरेरी थ्योरी, ये शब्द सुनते ही शायद लगता है कि कोई बहुत अकेडमिक भारी भरकम बहस होगी, है ना?
हाँ बिल्कुल, लगता है कि अरे ये तो हमारे मतलब की चीज नहीं।
सही कहा, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है और काम की चीज भी।
बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये किताब एक तरह का चश्मा है।
चश्मा?
अच्छा।
हाँ, मतलब एक ऐसा चश्मा जिससे हम ये देख पाते हैं कि कैसे भाषा या कहानियां या विचार हमारी सोच को बनाते हैं, हमारी पहचान कैसे बनती है, दुनिया को हम कैसे देखते हैं, ये सब।
तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है इस थ्योरी के असली रोल को, मतलब उसकी भूमिका और उसके गोल को यानी लक्ष्य को समझना।
और ये आज के समय में जरूरी क्यों है, ये भी सोचना चाहिए।
हाँ बताइए।
देखिए, आज हम सूचनाओं के एक समंदर में हैं, है ना? हर तरफ से विचार आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, तो ये समझना कि कोई बात क्यों कही जा रही है, उसके पीछे मान्यता क्या है, ये जानना अब बहुत अहम हो गया है।
सही कहा।
और कलर की ये किताब इसी आलोचनात्मक सोच का, क्रिटिकल थिंकिंग का दरवाजा खुलती है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से, जोनाथन कलल।
हाँ, जोनाथन कलल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और साहित्यिक सिद्धांत लिटरेरी थ्योरी की दुनिया में मतलब एक बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं।
और इनकी खासियत क्या है, कुछ अलग बात?
हाँ, उनकी खासियत है मुश्किल चीजों को आसान बनाना।
अच्छा।
जैसे फ्रांस के कुछ बड़े विचारक थे, सॉसर, डेरिडा, फूको, जिनके विचार थोड़े क्या कहते हैं, जटिल नहीं जाते हैं, कलर ने उनके विचारों को अंग्रेजी दुनिया के लिए, मतलब आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, और वो भी बिना उनकी गहराई कम किए।
ये तो कमाल की बात है।
और वो किसी एक वाद की, मतलब किसी एक आइजम के पैरोकार नहीं है।
मतलब वो ये नहीं कहते कि बस मार्क्सवाद ही सही है या मनोविश्लेषण ही सब कुछ है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि वो थ्योरी को कुछ बुनियादी सवालों के आसपास घूमती हुई एक जिंदा बातचीत की तरह देखते हैं। उनका रोल, जैसे आपने कहा, एक गाइड का है जो हमें इस बौद्धिक भूल भुलैया में रास्ता दिखाता है। सही का, वो हमें दिखाते हैं कि थ्योरी का लक्ष्य सिर्फ अकादमिक बहसें करना नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने के हमारे जो तरीके हैं ना, उन पर ही सवाल उठाना है।
अच्छा।
ये कॉमन सेंस पर सवाल उठाने का एक औजार है, एक टूल है।
तो अब आते हैं इस किताब पर, लिटरेरी थ्योरी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताब क्या करने की कोशिश करती है, इसका गोल क्या है असल में?
देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य है थ्योरी को, जो एक रहस्य का पर्दा उस पर पड़ा रहता है ना, उससे बाहर निकालना। ये दिखाना कि यह सिर्फ साहित्य के छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि हम दुनिया का मतलब कैसे निकालते हैं। ये पूछती है कि हम जिसे सच मानते हैं या वास्तविकता कहते हैं या अपना स्व मानते हैं, वो आखिर बनता कैसे है।
और ये काम ये किसी इतिहास की किताब की तरह नहीं करती कि पहले ये सिद्धांत आया फिर वो?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कुछ बड़े सवालों के इर्द गिर्द बुनी गई है।
जैसे?
जैसे कि थ्योरी आखिर है क्या चीज, साहित्य किसे कहते हैं, भाषा कैसे काम करती है, हमारी पहचान कैसे बनती है, इस तरह के सवाल।
और यहीं पर थ्योरी का रोल सामने आता है ना?
हाँ बिल्कुल। कलर के अनुसार थ्योरी एक तरह की आलोचनात्मक प्रैक्टिस है, मतलब सोचने का एक अभ्यास। ये चीजों को अलग अलग नजरियों से देखती है, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स, साइको एनालिसिस। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे कॉमन सेंस को, हमारे सहज बोध को चैलेंज करती है। ये कहती है कि भाई, जिसे हम स्वाभाविक मान रहे हैं वो असल में गढ़ा गया है, बनाया गया है।
तो चलिए किताब के कुछ मुख्य विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम हर अध्याय को लाइन से लाइन तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे उठाते हैं जो थ्योरी की भूमिका और लक्ष्य को दिखाते हैं।
ठीक है।
तो पहला बड़ा सवाल, ये थ्योरी चीज क्या है और ये साहित्य जिसका ये अध्ययन करती है वो क्या भला है?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। पहले अध्याय में कलर यही साफ करते हैं कि थ्योरी कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है जिसे आप लैब में टेस्ट कर सकें, यह सोचने का एक तरीका है।
सोचने का तरीका?
हाँ, इसकी खासियत है कि ये कई विषयों से ज्ञान लेती है, इंटरडिसिप्लिनरी है, चीजों का बारीकी से विश्लेषण करती है, और सबसे ज्यादा ये उन बातों पर सवाल उठाती है जिन्हें हम मानकर चलते हैं।
जैसे?
जैसे सच क्या है, इंसान होने का मतलब क्या है, इस तरह की बातें।
इसका रोल है हमें हमारे आरामदेह यकीन से बाहर निकालना।
और फिर सवाल आता है साहित्य का, साहित्य क्या है, क्या ये बस अच्छी भाषा है या काल्पनिक कहानियां?
कलर कहते हैं ऐसी कोई एक परिभाषा नहीं है जो हमेशा हर जगह काम करे, बल्कि साहित्य, वो कहते हैं, भाषा का एक ऐसा इस्तेमाल है जिस पर हम एक खास तरह से ध्यान देना सीखते हैं।
एक खास तरह से ध्यान देना, इसमें क्या खास है?
इसमें दो बातें अहम हैं। एक, साहित्य भाषा को खुद आगे ले आता है, मतलब फोरग्राउंड करता है।
फोरग्राउंड?
हाँ, मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या कहा गया, यानी कंटेंट क्या है, बल्कि ये भी देखते हैं कि कैसे कहा गया है, शब्द कैसे चुने गए, लय कैसी है, रूपक क्या इस्तेमाल हुए हैं, ये सब मायने रखता है। अच्छा, यानी फॉर्म पर ध्यान देना।
बिल्कुल। और दूसरी बात, तेरा साहित्य अक्सर काल्पनिक होता है, वो अपनी दुनिया खुद बनाता है, इससे वो सीधे मतलब से ज्यादा गहरे सांकेतिक अर्थ पैदा कर पाता है, सिंबॉलिक मीनिंग्स।
तो फिर साहित्य का रोल क्या हुआ? सिर्फ मनोरंजन तो नहीं?
नहीं, सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये संस्कृति को सिखाने, विचार बनाने और दुनिया को समझने के ढांचे घड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। थ्योरी का काम इसी प्रक्रिया का विश्लेषण करना है, उसे समझना है।
अच्छा, तो हमने समझा कि थ्योरी सवाल उठाती है और साहित्य भाषा का एक खास इस्तेमाल है। अब आते हैं उस चीज पर जो इन दोनों के बिल्कुल केंद्र में है, भाषा और अर्थ।
हाँ, भाषा और अर्थ, ये किताब का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, थ्योरेटिकल कोर कह सकते हैं।
और यहाँ फर्डिनेंड डी सॉसर का नाम आता है ना, स्विस भाषाविद।
हाँ, सॉसेर, उनके विचार तो क्रांतिकारी थे, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी। उन्होंने कहा कि शब्द और उसके मतलब के बीच का जो रिश्ता है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मनमाना है, आर्बिट्रेरी है।
मनमाना मतलब?
मतलब कुर्सी को कुर्सी कहने का कोई लॉजिकल कारण नहीं है, बस हमने मान लिया है, एक कन्वेंशन है।
अच्छा,
और उससे भी बड़ी बात, सॉसर ने कहा कि किसी शब्द का मतलब इसलिए नहीं होता कि वो किसी चीज से सीधे जुड़ा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो भाषा के सिस्टम में दूसरे शब्दों से अलग है।
अलग है। कैसे?
जैसे बिल्ली का मतलब बिल्ली इसलिए है क्योंकि वो कुत्ता नहीं है, चूहा नहीं है, मेज नहीं है।
अरे वाह,
भाषा एक अंतर का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ डिफरेंस।
ये तो बिल्कुल अलग तरह से सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा दुनिया को सिर्फ दिखाती नहीं, बल्कि उसे बनाती भी है, कंस्ट्रक्ट करती है।
बिल्कुल, यहीं पर भाषा की असली ताकत है, उसका असली पावर। और यहीं पर जैक्स डेरिडा जैसे विचारक आते हैं, वो सॉसर की बात को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं अगर मतलब अंतर पर टिका है तो वो कभी भी पूरी तरह स्थिर या प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा थोड़ा आगे खिसकता रहता है, टलता रहता है, डेफर होता रहता है।
डेफर।
हाँ, इसी को वो डिफरेंस कहते हैं, एक ऐसा शब्द जो अंतर और टालने दोनों का इशारा करता है।
बाप रे, तो क्या क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी किसी बात का पक्का मतलब जान ही नहीं सकते? ये तो बड़ी अस्थिर दुनिया हो गई।
हाँ, एक मायने में कह सकते हैं, डेरिडा का जो विखंडन है टी कंस्ट्रक्शन,
हाँ, सुना ये शब्द।
वो यही दिखाता है। इसका मतलब किसी टेक्स्ट को तोड़ना फोड़ना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे हर टेक्स्ट, हर कथन अपने अंदर ही विरोधाभास और अस्थिरताएं छुपाए रखता है।
अच्छा,
कोई एक सही मतलब नहीं होता है। थ्योरी का लक्ष्य यहां हमें इसी अस्थिरता के प्रति सचेत करना है, ये दिखाना है कि मतलब हमेशा बनता रहता है, उसे पाया नहीं जाता।
ये तो हुई भाषा और अर्थ की बात, बड़ी गहरी बात है। लेकिन साहित्य सिर्फ शब्दों का खेल तो नहीं है, उसमें कहानियां होती हैं, भावनाएं होती हैं। किताब इस बारे में क्या कहती है?
बिल्कुल, किताब कथा यानी नैरेटिव पर भी बात करती है, और भाषा के उन तरीकों पर भी जिनसे साहित्य अपना असर पैदा करता है। जैसे अलंकार शास्त्र है, रिटोरिक, भाषा को सजाने और प्रभाव डालने की कला।
हाँ, रूपक, उपमा वगैरह।
हाँ, और ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये सोचने के तरीके भी हैं। जैसे हम कहते हैं तर्क एक युद्ध है या समय पैसा है, ये रूपक हैं जो हमारी सोच को आकार देते हैं।
सही बात है।
और फिर है कथा शास्त्र, नैरेटोलॉजी, यानी कहानियां कैसे काम करती हैं, कहानी का प्लॉट कैसे बनता है, कहानी किसके नजरिए से कही जा रही है, जिसे फोकलाइजेशन कहते हैं।
हाँ,
ये सब मिलकर कहानी का मतलब और उसका असर तय करते हैं।
और कहानी कहने का रोल भी तो बहुत बड़ा होता होगा।
हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा। कहानियां हमें बताती हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, अच्छा इंसान कैसा होता है, प्यार क्या होता है, ये सांस्कृतिक मूल्य और विचारधाराएं हम तक पहुंचाती हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता।
हाँ, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में माँ का एक खास स्टीरियोटाइप होता था।
बिल्कुल सही उदाहरण है। थ्योरी का काम है इन कथात्मक पैटर्न्स को इन नैरेटिव पैटर्न्स को और उनके वैचारिक असर को उजागर करना।
किताब में एक और दिलचस्प विचार है परफॉर्मेटिव भाषा का, जे एल ऑस्टिन का आइडिया, ये क्या चीज है?
हाँ, ऑस्टिन भाषा के दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ चीजों का वर्णन नहीं करती, जैसे ये कहना कि बिल्ली चटाई पर है।
हाँ,
ये तो वर्णन हुआ।
हाँ,
लेकिन कभी कभी भाषा कुछ करती भी है, एक्शन करती है।
करती है कैसे?
जैसे जब कोई कहता है मैं वादा करता हूं, तो वो सिर्फ बता नहीं रहा कि वो वादा करेगा, वो उसी क्षण वादा कर रहा है।
अच्छा, हाँ सही बात है।
या जब पंडित शादी में कहते हैं अब आप पति पत्नी हुए, तो उनके शब्द सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे, वो एक सामाजिक सच्चाई बना रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं।
कमाल है, तो भाषा एक्शन भी है।
हाँ, और इसका बहुत गहरा असर है। जूडिथ बटलर जैसे विचारकों ने इसे जेंडर पर लागू किया।
जेंडर पर कैसे?
उन्होंने कहा कि जेंडर कोई अंदरूनी चीज नहीं है जैसे हमारी आंखों का रंग, बल्कि ये परफॉर्मेटिव है, यानी हम समाज के नियमों के हिसाब से बार बार कुछ खास तरीके से व्यवहार करते हैं।
जैसे लड़कियों से खास तरह के कपड़े पहनने या व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है।
बिल्कुल, और इसी दोहराव से, इसी परफॉर्मेंस से औरत या मर्द होने का एहसास या पहचान बनती है।
ये दिखाता है कि भाषा और हमारे काम कैसे हमारी पहचान को गढ़ते हैं।
थ्योरी का रोल यहाँ भाषा की इस सक्रिय, दुनिया बदलने वाली ताकत को समझना है।
और ये हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है जो शायद सबसे निजी लगता है, मैं कौन हूँ, हमारी पहचान, हमारा स्व, जिसे थियोरी में सब्जेक्ट कहते हैं।
हाँ, सब्जेक्ट।
पारंपरिक सोच तो कहती है कि हम सब अंदर से अनोखे हैं, तर्क करने वाले हैं, आजाद व्यक्ति हैं।
हाँ, ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन यही मानता है, लेकिन थ्योरी इसे भी मौलिक रूप से चुनौती देती है।
कैसे?
कई अलग अलग नजरियों से, जैसे मनोविश्लेषण है, फ्राइड, लकां, वो कहते हैं कि हमारा चेतन मन तो बस सतह है, असली खेल तो अचेतन मन में चलता है, अनकॉन्शियस में, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फिर मार्क्सवाद है, जो कहता है कि हमारी पहचान हमारी सामाजिक क्लास और उस विचारधारा से बनती है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, रूलिंग क्लास के आइडियाज।
और फुको, उनका नाम भी आया था।
हाँ, मिशेल फुको। वो कहते हैं कि व्यक्ति या सब्जेक्ट खुद एक ऐतिहासिक रचना है, जिसे अलग अलग संस्थाओं ने, जैसे अस्पताल, स्कूल, कानून ने, अपने ज्ञान और शक्ति के सिस्टम से, जिसे वो डिस्कोर्स कहते हैं, उससे गढ़ाया है।
और फिर नारीवादी, उत्तर औपनिवेशिक, क्वियर थ्योरी भी हैं।
हाँ, वो दिखाती हैं कि कैसे समाज खास समूहों की पहचान बनाता है और दलित, अल्पसंख्यक, क्वियर, उन पर लेबल लगाता है, और कैसे लोग इन लेबलों से जूझते हैं, उन्हें अपनाते हैं या नकारते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसी से जुड़ी है।
तो कुल मिला के थियरी का लक्ष्य यहाँ ये दिखाना है कि जिसे हम अपना मैं या अपनी सहज पहचान समझते हैं, वो उतनी सीधी साधी या प्राकृतिक नहीं है।
बिल्कुल, वो भाषा, समाज, इतिहास, विचारधारा, मनोविज्ञान, इन सब ताकतों की देन है। एक बहुत ही जटिल बुनावट है।
और थियरी का रोल हमें इस बुनावट को समझने में मदद करना है।
वाह, ये तो काफी कुछ हो गया सोचने के लिए।
अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो संक्षेप में,
हाँ,
तो वो क्या होंगी? थियरी की भूमिका और लक्ष्य क्या है आखिर में?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात है, थियरी का रोल कॉमन सेंस पर सवाल उठाना है। जो चीजें हमें बिल्कुल स्वाभाविक लगती हैं, नॉर्मल लगती हैं, चाहे वो समाज की रीति रिवाज हों, मीडिया की खबरें हों, या हमारी अपनी सोच।
हाँ,
थियोरी हमें सिखाती है कि उनके पीछे छिपी मान्यताओं को देखो, इतिहास को देखो, ताकत के रिश्तों को देखो।
ये हुई पहली बात। और दूसरी?
दूसरी बात, थियोरी का लक्ष्य हमें ये दिखाना है कि अर्थ या मीनिंग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो भाषा के इस्तेमाल से, पढ़ने वाले के नजरिए से और सामाजिक संदर्भ में लगातार बनता बिगड़ता रहता है।
कोई अंतिम सत्य या सही मतलब नहीं होता।
सही कहा, इसे हम रोज देखते भी हैं, जब एक ही घटना की, एक ही बयान की अलग अलग लोग बिल्कुल अलग अलग व्याख्या करते हैं।
बिल्कुल।
तीसरी बात,
तीसरी
कि भाषा सिर्फ दुनिया का आईना नहीं है, वो उसे बनाने वाली छेनी हथौड़ी भी है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते सब भाषा से गहरे जुड़े हैं और उससे बनते भी हैं। थ्योरी हमें भाषा की इस रचनात्मक और कई बार कंट्रोल करने वाली शक्ति के प्रति जागरूक करती है, ये उसका एक अहम रोल है।
और चौथी?
चौथी कि हमारा स्व, हमारी पहचान कोई अंदरूनी चीज नहीं जो हमेशा से वैसी है, वो बाहरी ताकतों, समाज, संस्कृति, इतिहास, विचारधारा का नतीजा है, प्रोडक्ट है। थ्योरी का गोल हमें ये समझाना है कि हम कितने गहरे अपने परिवेश से जुड़े और बने हुए हैं। एक जगह कलर कहते हैं, मैं उनके शब्दों का सार बता रहा
हूँ। बताइए।
थ्योरी अक्सर सहज ज्ञान युक्त धारणाओं की आलोचना होती है। कॉमन सेंस कोई हमेशा से चला आ रहा सच नहीं, बल्कि इतिहास में बना है।
हाँ, ये सीधा थ्योरी के आलोचनात्मक रोल की बात करता है, क्रिटिकल रोल।
बिल्कुल। और एक और विचार है साहित्य को लेकर। साहित्य वो भाषा है जो खुद पर ध्यान खींचती है, हमें सिर्फ संदेश पर नहीं बल्कि भाषा पर भी गौर करने के लिए उकसाती है।
ये साहित्य के खास तरीके और उसके विश्लेषण की जरूरत पर जोर देता है।
सही। और ये वाला भी बहुत दिलचस्प है, मतलब को लेकर। टेक्स्ट का मतलब वो नहीं जो लेखक के मन में था, मतलब तो टेक्स्ट और पढ़ने वाले के बीच की बातचीत में पैदा होता है।
हाँ, ये पाठक की भूमिका और मतलब की अस्थिरता को दिखाता है, थ्योरी के मुख्य लक्ष्यों में से एक।
और आखिर में पहचान को लेकर वो कहते हैं, मैं जिसे हम अपना असली स्व समझते हैं वो कोई प्राकृतिक चीज नहीं बल्कि हमारी संस्कृति के विमर्शों डिस्कोर्सेस द्वारा बनाई गई एक व्यक्ति स्थिति सब्जेक्ट पोजिशन है।
ये दिखाता है कि कैसे हमारा स्व बाहरी ताकतों से बनता है और इसे समझना थ्योरी का एक अहम काम है।
ये सब सुनने में शायद थोड़ा अकेडमिक लगे।
हाँ, लग सकता है,
लेकिन असल में इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहरा नाता है।
हाँ बिल्कुल, इन्हें हम असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या फायदे हैं?
बिल्कुल हैं। सबसे पहला तो मीडिया को समझने में, मीडिया लिटरेसी जिसे कहते हैं। आज हम न्यूज, विज्ञापन, सोशल मीडिया से 24 घंटे घिरे हैं।
सही बात है।
थ्योरी हमें सिखाती है कि हम पूछें, ये कहानी कौन सुना रहा है, किसका नजरिया पेश किया जा रहा है, किन शब्दों का, किन तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या छुपाया जा रहा है।
हाँ, जैसे भारत में कोई बड़ा विज्ञापन अभियान चल रहा हो तो हम सोच सकते हैं कि वो किस तरह की लाइफस्टाइल को आइडियल बता रहा है, कौन से मूल्य बेच रहा है और क्यों, या किसी राजनीतिक नारे के पीछे की विचारधारा क्या है।
बिल्कुल। थ्योरी यहाँ एक डिटेक्टिव के लेंस की तरह काम करती है।
और दूसरा क्या फायदा हो सकता है?
दूसरा ये हमें अपनी और दूसरों की पहचान को बेहतर समझने में मदद करती है। जब हम समझते हैं कि जेंडर, जाति, धर्म जैसी पहचानें काफी हद तक सामाजिक रूप से घड़ी जाती हैं, तो हम शायद अपने पूर्वाग्रहों पर ज्यादा सवाल उठा पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि कैसे अलग अलग समूहों को अलग अलग खांचों में फिट करने की कोशिश की जाती है और इसका उन पर क्या असर होता है। इससे सहानुभूति बढ़ सकती है, एम्पथी।
और तीसरा
यह हमें सत्ता और आम राय पर सवाल उठाना सिखाती है। जब कोई कहता है ये तो जाहिर सी बात है या सब जानते हैं, तो थ्योरी हमें रुककर सोचने को कहती है, किसके लिए जाहिर है, को फायदा है, क्या कोई और नजरिया भी हो सकता है।
ये सवाल पूछना तो किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, यही थ्योरी का सबसे शक्तिशाली व्यवहारिक रोल है।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से, इस चर्चा से हमारे लिए क्या निकला, क्या टेक अवे है?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि थ्योरी कोई डरावनी चीज नहीं है।
हाँ, ये डर हटाना जरूरी है।
हाँ, बल्कि ये दुनिया को ज्यादा गहराई से देखने का एक तरीका है, एक नजरिया है। ये हमें सिखाती है कि चीजें सतह पर जैसी दिखती हैं अक्सर वैसी होती नहीं है। इसकी भूमिका हमें सवाल पूछना सिखाना है, ना कि तैयार जवाब देना।
और मेरे लिए सबसे अहम सीख ये है कि हम सब हर पल मतलब बनाते रहते हैं। दुनिया का, टेक्स्ट का, अपनी जिंदगी का कोई एक फिक्स्ड मतलब नहीं है जिसे हमें बस खोजना है।
हम भाषा के जरिए, कहानियों के जरिए, अपनी सोच के जरिए इसे लगातार गढ़ते हैं, बनाते हैं।
और थ्योरी का लक्ष्य हमें इसी रचनात्मक प्रक्रिया के प्रति सचेत करना है, जागरूक करना है,
ताकि हम इसे ज्यादा जिम्मेदारी से कर सकें।
और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हमारी दुनिया और हमारी पहचान भाषा और कहानियों से इतनी ज्यादा बनती है, तो क्या हम जानबूझकर, सोच समझकर अपनी भाषा और कहानी कहने के तरीकों को बदलकर एक बेहतर या ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।